الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم فسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فرمایا کہ معصیت سبب نہایت بری اور مہلک چیز ہے، اس سے اجتناب کی سخت ضرورت، اور وہ کھڑی بندے کے واسطے نہایت ہی مضبوط اور مضبوط ہے جس میں یہ اپنے خدا کا نام فرمان اگر اس کو تو فوراً معافیت کرنے کے بعد الگ پر غفلت محسوس ہو ظلمت محسوس ہوتی ہے، اور بعض نام قربانیوں کا یہ بھی اثر ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے ہمیں اپنی توفیق خرچ کریں، بڑے خوف کی بات ہے. اور معافیت میں ایک خاصیت اور بھی ہے کہ اس کے محکوم اس کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں. ایک بزرگ گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ شوخی کرنے لگا، فرمایا آج جس سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ ہماری نافرمانی کر رہا ہے. اور ایک خاصیت معافیت کی سب سے اچھا وہ یہ کہ کبھی بے صبری اور بے حیائی سے صغیرہ سے کبیرہ حاصل ہو جاتا ہے اور مطلب کفر کا بن جاتا ہے. اس لیے انسان کبھی گناہ کر کے بے فکر نہ ہو، توبہ استغفار کرتا رہے، مگر یہ بھی نہیں کہ اسی کو کرتا نہ پتا رہے اور اس کی مراقبت رہا کرے، بلکہ ایک بار خوب باقاعدہ توبہ کر کے کام لے لے اور اس کے بعد پھر جب کبھی خیال آ جایا کرے اللہ بجلی کہہ کر پھر آگے چلے پھر کام کرے. اس ارشاد میں حضرت حکیم الامہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ رحو نے بہت ہی اہم بات کی طرف توجہ دلائی جس سے اکثر غفلت بہت عام ہے. وہ یہ کہ ایک مومن کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے بچنے کی فکر کرے، اور گناہ کے اندر کیا کیا نقصانات ہیں اس کا کچھ حضرت والا نے اس مضمون میں ذکر فرمایا. یہ بات بکثرت دیکھنے میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ جو دین کی طرف چلنا شروع کرتے ہیں یا دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نوافل کے پیچھے تو بہت پڑے رہتے ہیں کہ نفلی عبادتیں کریں، ذکر کریں، تسبیح کریں اور آپ وظائف کا اہتمام کریں. اس کی تو بڑی فکر ہے، بڑا اہتمام ہے، بعض اوقات اہمیت کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے. لوگوں سے پوچھتے پوچھتے ہیں کیا کیا پڑھوں، کیا کیا نہ پڑھوں، کیا وظیفہ پڑھوں، کیا فرض کروں، کیا ذکر کروں. لفظی عبادتوں کا تو بڑا اہتمام، لیکن گناہوں سے بچنے کی فکر نہیں. صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جو مواقع آتے ہیں تو گناہ کر لیتے ہیں اور پرواہ نہیں کرتے، आपका गुनाह अल्लाह बचाए, जबान का गुनाह, कान का गुनाह, हाथ पांव का गुनाह, इससे बचने का एहतमाम नहीं। वजीफे होते जा रहे हैं, गलतियां पड़ी जा रही है, जिक्र किया जा रहा है, लेकिन आप इबादत नहीं, आप जो है वो नाजायज चीजों को देख रही है, नाजायज चीजों से लज्जत ले रही है। इसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंखों का जिना फरमाया, अलैहि वसल्लम, उससे बचने की फिक्र नहीं, जबान बातों में नहीं, झूठ से सब कर रहा है, वजीफ में बैठे हैं तो गीबत हो रही है, दूसरे की बुराई हो रही है, दिल छिकनी हो रही है, दिल आजादी हो रही है, ताकि किए जा रहे हैं दूसरे, इसका एहतमाम नहीं, ताजी भी हो रहा है, इतराब भी हो रही है, तस्बीहें भी पड़ी जा रही है, नकली तिलावत भी हो रही है, लेकिन गुनाहों से बचने की फिक्र नहीं, गुनाहों से बचने का एहतमाम नहीं। आज आके ये नकली इबादतें बेशक बड़ी बरकत की चीज है, बड़े सवाब की चीज है, लेकिन वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है, और गुनाहों से बचना फर्ज है। तो आदमी अगर नकली इबादत को अंजाम दे और गुनाह से बचे नहीं, तो क्या होगा कि नकली इबादत अगर फर्ज करो सारी जिंदगी को आती है, नकली इबादत ना करें, ठीक ही नकली इबादत ना करें, लेकिन फराय वाजिबात सारे अदा करते रहे और गुनाह से बचता रहे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की बशारत है। एक आरबी हदीस में आता है, देहाती आदमी आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान इस्लाम के तकाज़े पूछे, आपने बताया कि भाई पांच वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हैं और रमज़ान का रोज़ा फर्ज है और हज फर्ज है और ज़कात फर्ज है, ये फ़राइज़ बताए ईमान के। तो उसने कहा कि जो कुछ फ़राइज़ आपने बताए हैं, मैं ना इसमें कमी करूँगा ना ज़्यादती करूँगा, जितनी आपको बताया मैं तो अमल करता हूँ बता दें। तो सरकार ने जवाब में उसको देखकर फरमाया कि अगर ये सच बोल रहा है ये सब और वाकई इस पर अमल करता है सारी जिंदगी, तो ये जन्नत में जाए। हालांकि वो उसने कहा था कि मैं नफरी इबादत नहीं करूँगा, लेकिन आपको फरमाया जन्नत में जाए। तो नफरी इबादतें जो है वो फर्ज वाजिब नहीं है, और अगर उसने सारी जिंदगी अंजाम कर दी लेकिन गुना से बढ़ता रहे और फराइज और वाजिबात अदा करता रहे, तो जन्नत में जाएगा इंशाल्लाह, दोज़ख की हवा भी लगेगी इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई शख्स नफली इबादत को खूब अंजाम देता है और गुनाह से बचता नहीं, तो उसके जन्नत में जाने की कोई गारंटी नहीं, गुनाहों का आकाब अल्लाह बचाए सहना पड़ेगा। इसलिए जितने अहमियत हम लोग नवाफिल को नफली इबादतों को देते हैं, उससे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए गुनाहों से बचने कि हमारे जो आता है जो अल्लाह तबारक व तआला के अता फरमाए हुए हैं, इनसे कोई नाफरमानी सरकर ना हो, क्यों ना हो, और उसकी क्या नुकसान है ना फरमाए सरकर होने के वजह से यहाँ पर बयान फरमाए। पहली बात तो यह है कि गुनाह जो होता है, जब भी कभी सरदर्द होगा तो इंसान के जिस्म के आधा से होगा, या आँख से होगा या कान से होगा, कोई गलत नाजायज चीज सुनने से होगा, जैसे गाना बजाना सुनने से होगा, गीबत सुनने से होगा, या जबान से होगा कि झूठ बोले इंसान, गीबत करे, किसी का दिल जलाए, दिल आजारी करे, झूठ बोले उससे होगा, या हाथ पाँव से होगा, या दिल से होगा, दिल में गलत गलत किस्म के ख्याल अपने इख्तियार से सोच सोच कर गलत ख्याल दिल में ला रहे हैं, ये दिल का गुनाह। ये सारे गुनाह जो होते हैं वो आशाएं इंसान के जिस्म के आधा से होते हैं, और ये आधा क्या है, ये अल्लाह जल्ल जलालुहु का अतिया है हमें आपको याद है। अल्लाह ताला ने भूख दे दिए हैं, इनको हासिल करने के लिए कोई पैसा हमने खर्च नहीं किया, कोई मशक्कत हमने उठाई नहीं, कोई मेहनत हमने उठाई नहीं, बाजार से कोई खरीद के नहीं लाए थे, यहाँ देखने के लिए या जबान बोलने के लिए या कान सुनने के लिए, अल्लाह तबारकुल्लाह ने बगैर मां के बेकीमत मुफ्त अदा करता है, क्योंकि मुफ्त में भी ज्यादा कदर नहीं है, कदर नहीं है। अगर खुदा ना करे, खुदा ना करे किसी वक्त आप कान ना वो जबान इसका अमल खत्म हो जाए, आप देखने से महरूम हो जाए, तो आप सोचो कि अगर किसी की अचानक बैठे बैठे बिलाई जाती है तो अपने सारी जिंदगी में सारी जमा पूंजी जो है वो खर्च करने को तैयार हो जाएगा कि मैं खर्च कर दूँ, लेकिन किसी में आपको सिर्फ बिलाई वापस आए देखने लगे। अगर खुदा ने करे बोलने की सलाहियत प्रवास से खत्म हो जाए तो सोचो कि क्या इंसान के ऊपर गुजरेगी, वो चाहेगा कि चाहे मेरे साथ दौलत ले जाए कोई तक, लेकिन मेरे बोलने की ताकत आ जाए, मैं किसी के सामने अपने दिल की बात कह सकूं। जो लोग इस बोलने की ताकत से महरूम होते हैं उनके मेजाजी का अंदाजा करो कि जब वो कोई बात कहना चाहते हैं किसी से नहीं कह सकते क्या हो सकती है उनके दिलों में, लेकिन अल्लाह तआला ने इसलिए हमें आपको मुक्त दे रखी है, किसी वक्त की रुकावट ना कर सकती, जिधर भी आप में प्यार आया उधर जबान से निकाल दिया, कान की समाज किसी तरह लगाने का फरमा रहे। तो सबके अल्लाह से जलाल रूप की अता है, उसकी नेमत है, उसका एहसान है, उसने अपने फजल करम से मुफ्त हमें ये चीजें अता फरमाई। अब एक दास ने खुद आपको एक हदिया दिया कि भाई तुम्हारे इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं, इस्तेमाल करो, और आप उसको इस्तेमाल करने लगो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया, कितनी बड़ी जिल्लत की बात है, कितनी कमीनगी की बात है कि किसी किसी के दिए हुए हदिये को आदमी उसके खिलाफ इस्तेमाल करे। फर्ज करो किसी ने आपको कार दे दी सवारी के लिए कि जो भाई ये कार आपके लिए है, मैं हदिया देता हूँ, या मुस्तआन के पास महीने भर तक इसको इस्तेमाल, उसका एहसान है, और ना आपने पैसे दिए उसके, ना आपने उसको उससे मांगा था, ना आपने पैसे दिए थे, ना आपने उसको हासिल करने की कोशिश की थी, उसने एहसान करके आपको सवारी दे दी, तो अब आप वो सवारी लेकर क्या करो कि उसके पुर्जे चोरी करने शुरू कर दो, उस गांव के पुर्जे चोरी करने शुरू कर दो, किसी कमीशी की बात होगी कि किसी ने आपके साथ एहसान किया था और आपने उसके खिलाफ उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, उसके जोश के अंदर जोश शुरू कर दिया, या फर्ज करो उस कार को आप उसके खिलाफ साजिशें करने के लिए इस्तेमाल करो, उसके दुश्मनों के पास ले जाओ और दुश्मनों को उसके ऊपर उकसाओ के इसको तकलीफ पहुँचाएं, इसको नुकसान पहुँचाएं, इससे ज़्यादा कमीन की बात क्या हो, अगर तो किसी को भी बिना वजह नुकसान पहुँचाना हराम ना जाए माफियत है, लेकिन ये उलक्षण है हमारा जिसने हमारे साथ एहसान किया, उसके दी हुई चीज को उसी की मर्जी के खिलाफ उसको नुकसान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल करो, तो इंतहा दर्जे की रदालत है, इंतहा दर्जे की कमीन की है, कोई भी इंसान जिसमें इंसानियत की रकम हो ये काम नहीं करे। किसी ने आपको घर दिया रहने के लिए तुम्हें राहुल इतना बड़ा एहसान किया, कौन देता है अपना घर किसी को रहने के, लेकिन आप रहने के बाद खुद करके ये चीजों को उसके अंदर चोरी करना शुरू कर, उसमें उस घर के अंदर उसके दुश्मनों को लाकर बताकर उसकी साजिशें शुरू कर उसके खिलाफ, तो कितनी बड़ी कमीनगी की बात। यही मामला हमारे जिस्म के सारे आधार पर है, सर से लेकर पांव तक हमारा बार बार अल्लाह जल्ला जलालू का अतिया कहीं से बाजार से खरीद कर मिल गया है, ये अपने से समझा होगा ये अल्लाह के बारे में बताना चाहता है। अपना इख्तियार को देते वक्त अल्लाह तआला ने फरमा दिया, देखो तुम्हें मैंने आंखें दी हैं, ये आंखें इस काम के लिए हैं कि तुम इससे दुनिया के नजारों से लुत्फ उठाओ, अपने अजीजों करीबों को देखो, अपने दोस्त अहबाब को देखो, दुनिया की शायद चीज़ों में फायदा उठाओ, इसलिए तुम्हें दिया। लेकिन खबरदार, इसको ना महरम को देख कर लज्जत हासिल करने के लिए देखने में इस्तेमाल न करना है। तो उसने देते वक्त की पाबंदी लगाई, बहुत लंबी चौड़ी कोई पाबंदी नहीं है, हर वक्त आंखें खुली है और ये मनाजिर देखो, ये बादल देखो, ये बारिश देखो, ये सबले देखो, ये बाघ देखो, ये पहाड़ देखो, ये दरिया देखो, ये कुदरत के मनाजिर देखो और अपने अजीजों करीबों को देखो, अपनी औलाद को देखो, अपने अपने बहन भाइयों को देखो, उनसे बातें करो, उनसे लुत्फ हासिल करो, सब जाएगा तुम्हारे। यहाँ तक कि अपनी बीवी को देखो, मोहब्बत की निगाह तक देखो। बारिश में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक शौहर घर से बाहर था, घर में दाखिल हुआ और उसने अपनी बीवी को मोहब्बत की निगाह से देखा और बीवी ने शौहर को मोहब्बत की निगाह से देखा, तो अल्लाह ताला दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं। तो अल्लाह तबार बता रहे तुम्हारी एक जायज रास्ता भी मुकर फरमा दिया कि आँख के अंदर अगर एक गुस्सावत की का जज्बा है तो उसका जायज रास्ता भी तुम्हारे लिए मुकर कर दिया है कि बीवी शौहर को देखे, शौहर बीवी को देखे, महब्बत के साथ देखे, तो नफिल के लिए जायज है बल्कि अल्लाह ताला रहमत की निगाह से देखते हैं। ये सब जायज कर दिया तुम्हारे, कोई इतनी बड़ी पाबंदी नहीं लगाई कि तुम्हें अपनी आंखों को बहुत रोक के रखना पड़ेगा, सब चीजें जाएगा, लेकिन थोड़ी सी कि ना महरम को लज्जत हासिल करने के लिए ना महरम पर निगाह न डाले। और उसके लिए तरीका बता दिया कुरान करीम ने कि कुल लिल मोमिन यकुन हु मिन अबसारिह, मोमिनों से कह दो, मोमिनों से कि वो अपनी निगाहों को नीचा रखा करें, नीचा रखा करें, बाहर निकले बाहर जाए तो हर वक्त चारों तरफ मनाजिर मौजूद होते हैं, उसमें अंदेशा होता है कि ना जाए चीजों पर निगाह पड़ जाए, तो उसका आसान रास्ता यह है कि आदमी निगाह नीची करके जाए। इस तरह दाएं बाएं हाथ वो नजरें दौड़ाता हुआ ना जाए, नजरें निगाह नीची करके जाए। हमारे अखबार हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो जब शैतान को निकाला जा रहा था जन्नत से, तो उसने पहले तो अल्लाह से ये दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे इतनी लंबी उम्र दे दीजिए कि क़यामत तक जिंदा रहूं, पहले तो ये मांग लिया, अल्लाह ताला दे दी, चल तुझे क़यामत तक की जिंदगी दे। जब ये देश तो अब आके उसने अपना जो मंसूबा जाहिर किया वो ये कि मैं अब तेरे ये जो आदम था इसके आगे सजदा करने का तूने मुझे हुक्म दिया था और मैंने सजदा नहीं किया, उसकी वजह से मुझे जन्नत से निकाला, तो अब आदम के बेटों को मैं गुमराह करूँगा। तो अब गुमराह करने का जो मंसूबा बताया मुझे कि आखिर रहूँ मैं कई आएगी और मैं घर भी वहाँ खलीमा नहीं वहाँ समाएगी, कि मैं आदम के बेटों के पास इनके सामने से आऊँगा, इनके पीछे से आऊँगा, इनके दाएँ से आऊँगा, इनके बाएँ से आऊँगा, यानी चारों तरफ से हमला करूँगा मैं आदम के बेटों, सामने से भी पीछे से भी दाएँ से भी बाएँ से। हज़रत फरमाते हैं फरमाते हैं कि चार सुनते तो बता दी उसने कि चारों तरफ से आऊंगा, ऊपर का जिक्र नहीं किया और नीचे का जिक्र, ऊपर से आऊंगा नीचे से आऊंगा, ये नहीं कहा। दो सिमटे भूल गया, एक ऊपर की एक नीचे की। तो जिसका मतलब यह कि ऊपर से नहीं आएगा और नीचे से नहीं आएगा। लिहाजा शैतान से बचने का रास्ता यह है कि या तो आप ऊपर की तरफ निगाह करें या नीचे की तरफ करें। ऊपर की तरफ करेगा तो ठोकर खाएगा, गिरेगा। लिहाजा नीचे की तरफ निगाह करके चलेगा तो शैतान के हमले से महफूज है। और ऊपर की तरफ निगाह तो ना करे क्योंकि गिरेगा, लेकिन ऊपर की तरफ तवज्जो रखे। ऊपर की तरफ तवज्जो रखे, क्या के निगाह नीचे रखे और अल्लाह मुबारक बताना से अपना रिश्ता जोड़े रखे और अल्लाह ताला से काम करे कि अल्लाह चल तो रहा रास्ते में, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि निगाह निकल जाए, कान निकल जाए, दिमाग निकल जाए, अल्लाह का इबादत कर रहे। तो ऊपर और नीचे की ये दो चीजें हैं कि शैतान के हमलों से महफूज है। नीचे की निगाह करो ताकि शैतान के हमले से महफूज रहो, और ऊपर की तरफ तवज्जो करो यानी अल्लाह तबारक व तआला से मांगते रहो, अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ रुजू करते रहो कि या अल्लाह गुनाहों से बचना मेरे बस का काम नहीं, जब तक कि आप की तौफीक का मैं हाथ ना हो, अल्लाह अपनी रहमत से मुझे तौफीक दे दीजिए कि मैं गुनाह ना करूं। तो ये अल्लाह ने ये तरीका बता दिया मुझे अपनी निगाहें नीचे रखे जब। और यही मामला जबान का है कि अल्लाह की नेमत है जबान। जब से बच्चा बोलना सीखता है उस वक्त से लेकर मरते तब तक ये मशीन काम कर रही है, ये घिसती नहीं, ये पिटती नहीं, इसको तेल लगाने की जरूरत नहीं, इसको ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं, इसको सर्विस कराने की जरूरत नहीं, इसको ओवरहॉलिंग की जरूरत नहीं, मुझे सभी काम कर रही है अल्लाह ताला की देती हुई नेमत। और अल्लाह की आता है, अब इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसको ऐसा बनाया है कि अगर चाहो तो इसके जरिए अपने लिए आखिरत के जखीरे इकट्ठे कर लो। एक मरतबा सुभान अल्लाह कहते आदमी सच्चे दिल से अल्लाह ताला का जिक्र करे इसी जबान के जरिए, तो फरमाया कि इससे मीज़ान अमल का आधा पल्ला बढ़ जाता है। एक मरतबा सुभान अल्लाह, 100 मरतबा सुभान अल्लाह बिहम्दी का कलिमा सुबह तो आदमी पढ़े 100 मरतबा। बस इसमें आता है कि अगर रेत के जरात के बराबर भी गुनाह हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। तो चाहो तो किसी जबान से ज़खीरे इकट्ठे कर लो अल्लाह का जिक्र कर, और चाहो तो किसी से जहन्नम में गिरने का सामान कर लो। हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों को जहन्नम में ऊंधे मुंह गिराने वाली कोई चीज ज्यादा खतरनाक नहीं है जितनी इंसान की जबान। इन सबसे ज्यादा इंसान जो जहन्नम में जाएंगे वो अपनी जबान से बता देते, झूठ बोलकर, रीवन करके, दूसरों का दिल दुखाकर, ताने मारकर, दिलादारी करके, ये जो जबान के तौर से गुनाह है इनसे जाएंगे जहन्नम। तो अल्लाह ताला ने जबान की है इस काम के लिए दी है कि अपनी माँ की तरबीत को अदा करो, जायज कामों में इस्तेमाल करो, लेकिन जब उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल, उसी की आशा और उसी को नाफरमानी में इस्तेमाल करना, ये बड़ी गैरत की बात है। किसी मोमिन के लिए ये मोमिन को सोचना चाहिए कि ये कितनी हसासत, कितनी रजाजत, कितनी बड़ी कमीन की है कि मोहसिन ने एक चीज हमें आशा फरमाई है बेकीमत, और उसको उसी के खिलाफ काम में इस्तेमाल करो। इसलिए आज भी कोई सोचना चाहिए और माफियत से गुनाह से बचने का कर। हजरत ने फरमाया कि यह इतनी बड़ी, इतनी बुरी बात है किसी मुहसिन को कि आका को उसकी नाफरमानी में इस्तेमाल करना, अगर हिट हो तो फौरन अर्थ में जुलमत में तारीखी में पता चले कि कितनी बुरी कितना जबरदस्त मैंने बुरा काम किया है। अल्लाह बचाए हम लोगों की हिस्स जो है वो मिट गई है, इस वास्ते गुनाह करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि क्या जुलमत पैदा हो। इन अल्लाह के बंदों को अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्स अता फरमाई, उनको पता चलता है कि जरा अगर कोई मातियत के करीब तो चले जाए तो हर सरकारी की जुलम का पैसा अजीब चले जाए। हजरत माना मोहम्मद याकूब साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह दारुल देवबंद के बिल्कुल इब्तदाई दौर के सदर मुदर्रिस थे। अल्लाह ताला ने बड़े कमालात से नवाजा था, इल्म भी बड़ा आला और अमल भी और सरफत वाला बुजुर्ग थे। तो उनका वाकया हजरत ने नकल फरमाया था कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाने लगे कि मैं किसी एक दावत में गया और वहाँ पता नहीं था कि दावत जिस आपने की है ये उनकी आमदनी में कोई खराबी की, लेकिन खींचने के दावत लेकिन थी कोई खराबी उनकी आमदनी। अब जब आदमी को पता ना हो ना वाकियत में चला जाए, उसको पता ना हो कि दावत गलत करने वाला इसकी आमदनी गलत है, ना वाकियत में चला गया तो अल्लाह ताला के यहाँ कोई मुआवजा नहीं होता। लेकिन चूंकि वो थी वो खाना और वो उसकी आमदनी थी उसमें ना जाए आमदनी की मिलावट थी, तो अल्लाह ने फरमाया कि ये महीने तक मैंने अपने कल्ब में जुल्मत का असर महसूस किया। क्या जुल्मत? जुल्मत ये कि इबादत में जो इबादत में दिल नहीं लग रहा और बार बार गुनाहों के तकाजे दिल में बैठ और एक दिल पर एक बादल छाया हुआ। अब वो देखो सही गुनाह भी नहीं था क्योंकि नवाकियत में चले गए, लेकिन सही गुनाह भी नहीं था, लेकिन क्योंकि गुनाह का ये आगे भी सो गई थी तो फरमाया दिल पर दिल पर कर जिनको अल्लाह से बात बताना है इस तरह फरमाते हैं तो उनको महसूस हो जाता है कि ये गुनाह का ये गुनाह की तारीखी है जो कल पर मुसलत हो गई। अब सुनिए कि नुकसान क्या क्या होते हैं गुनाह, ये बड़े सुनने की बात है। अल्लाह ताला अपने रहमत से सब हमारे दिलों में बिठा दे ये बात और हमें तौफीक दे कि गुनाहों से बचने। फरमाया कि ये गुनाह का एक असर ये होता है, अल्लाह बताए अमल की तौफीक सर्व कर ली जाती है। ये गुनाह की बेबरकती, गुनाह की नहूसत ये है कि अमल की यानी नेक अमल की तौफीक जो है वो छिट जाए, फिर नेक अमल की तरफ आदमी बढ़ना भी चाहता है लेकिन बढ़ नहीं पाता, गुनाह की नहूसत। अल्लाह ताला का पूछ हर मुसलमान को, ये आज हम लोग बकसरत शिकवा करते हैं, जरा अपने गरीबान में हम सब अपने मुंह को गरीबान में डाल कर देखें, हम सब शिकवा करते हैं कि भाई नमाज में दिल नहीं लगता, मामूलात जिक्र तस्बीह तिलावत के मामूलात को कायम कर रखे हैं लेकिन पाबंदी नहीं होती, सुस्ती हो जाती है, जब वक्त आता है तो हिम्मत कमजोर पड़ जाती है, सुस्ती आ जाती है। ये क्या हो रहा है? इसकी एक बड़ी वजह है गुनाहों से न बचने का एहतमाम, गुनाहों से बचने का एहतमाम न होना। जब एक गुनाह सरजद हुआ तो बजाहिर तो एक गुनाह था वो, लेकिन उसकी जुल्मत यह है, उसकी नहूसत यह है कि नेक अमल की तरफ रगबत कम हो जाती है। नेक अमल करने की जो तौफीक पहले मिल रही थी आसानी उस पर पैदा हो रही थी, उस पर मुश्किल हो जाती है, इसका बड़ा नुकसान हो जाता है। आदमी सोचता है कि भाई मैं चलो एक मरतबा गुनाह कर लिया, तौबा कर लूं, तौबा से गुनाह माफ तो हो जाता है, गुनाह माफ हो जाता है, लेकिन उसके जो नापीदा असरात हैं गुनाह के, जो जुल्मत उससे पैदा करती है, वो जुल्मत तो कुछ ना कुछ रहती है और उसके नतीजे में नेक अमल में कमी आती है। देखो इसकी मिसाल को समझो कि जैसे जख्म लगा जिस्म पर, तो जख्म लगाकर आपने मरहम लगाया, मरहम पट्टी की, तो वो जख्म मुंजमिल तो हो गया मगर वो निशान छोड़ जाता है अपना, वो बदनुमाई वहां पर पैदा होती रहती है। तो अगर किसी गुनाह को करके आदमी उसके साथ तौबा से उसको माफ भी करवा ले तो उसके ये असरात फिर भी आते हैं, जब तक कि अल्लाह ताला की हाँ अल्लाह ताला इश्क को जाहिर न फरमा दे उस वक्त तक असरात उसके बाद। तो इस वास्ते ये गुनाह जो है वो सिर्फ एक गुनाह नहीं होता, उस गुनाह के नतीजे में गुनाह गुनाह को फेंकता है और गुनाह जो है वो नेक अमल की तौफीक खर्च कर लेता है, सुस्तियां पैदा होने लगती है आमाल के अंदर। और जिनको अल्लाह ताला तौफीक दे देता है कि वो गुनाहों से मुकम्मल इज्तिनाब की, तो दिल में एक नूर पैदा होता है, उस नूर का नतीजा क्या होता है कि नेक अमल की तरफ रगबत होती है, उसकी हिम्मत हो जाती है, सुस्ती दूर हो जाती है, निशान पैदा हो जाता है उस नूर के नतीजे। मौलाना फरमाते हैं कि जिस्म बंदो गोश बंदो लब बंद, जिस्म बंदो गोश बंदो लब बंद, जब नतीजे दूर हक पर मन बसा, कि अपनी आंखों को जरा काबू में रखो कि नाजायज चीज न देखे, कान को काबू में रखो कि नाजायज चीज न सुने, जबान को काबू में रखो कि वो गलत बात उसके मुंह से न निकले। तो फरमाते ये काम कर लिया तो अगर इसके बाद अल्लाह ताला का नूर तुम्हें हासिल न हो तो मुझ पर मेरा मजाक उड़ा देना कि तुमने मैंने गलत बात कही, यानी इसके नतीजे में दिल में नूर हक पैदा होगा, वो नूर पैदा होगा कि तुम्हें कशा कशा ले जाएगा अल्लाह तबारक व तआला के साथ की तरफ, ताआत की तरफ, इबादात की तरफ, नेक अमाल की तरफ, नेक अमाल की तौफीक। और इसके बरखिलाफ अगर मासियतों के अंदर मुबतला रहे गफलत के आलम में तो वो नूर सल्फ होगा और नूर के सल्फ होने के नतीजे में ये सब खराब है। तो मेरे भाइयों अर्ज कर रहा था कि आज बकसरत हम लोगों को शिकायत रहती है कि मामूलात की पाबंदी नहीं होती, सुस्ती आ जाती है, काम करने का इरादा करता हूँ मगर फिर सुस्त पड़ जाता हूँ, ये सुस्ती क्यों हो रही है? इसकी बड़ी वजह यह है कि गुनाहों से बचने का एहतमाम। मैं एक मिसाल ये दिया करता हूँ आजकल उसकी समझने के लिए कि देखो अगर आजकल ये एयर कंडीशनर आ गए हैं जो कमरे को ठंडा करता है ना, तो कमरे को ठंडा करने के लिए ज़रूरी है कि एयर कंडीशनर अगर चलाओ तो खिड़कियाँ दरवाजे बंद करो, है ना, खिड़कियाँ दरवाजे बंद करने पड़ते हैं फिर एयर कंडीशनर चलाओ तो कमरा ठंडा होता है। और एयर कंडीशनर पर चलाया और खिड़कियाँ भी चौक खुली और दरवाजे भी चौक खुले तो क्या होगा, वो एयर कंडीशनर बेचारा क्या काम करेगा, वो बाहर से गर्मी ला रही है ठंडक फेंक रहा है, उससे बाहर से अंदर गर्मी अंदर आ रही है, नतीजे के नतीजा बराबर बराबर हो जाएगा, नफर टोटल सब बराबर कुछ नहीं हो। तो ये जितने अधिकार और आग हैं ये सब क्या है, ये एयर कंडीशनर है और ठंडा करने वाले हैं इंसान की, इंसान के रूह को ठंडा करने वाले, सुकून बसने वाले हैं। लेकिन उस वक्त जब से इन खिड़कियों को बंद किया हुआ, आंखों की खिड़कियों को, कानों की खिड़कियों को, जबान के दरवाजों को बंद किया हुआ हो, तो फिर ये अल्लाह का जिक्र और ये रब्बी इबादतें इंसान के दिल में राहत और सुकून पैदा करेगी। अल्लाह बिज़्निल्लाह मुतमईनुल क़ुलूब। लेकिन अगर तुमने ये सारे दरवाजे पर चौपट खोल लिए हैं और ऊपर से एयर कंडीशन में बैठना चाहते हो, यह हासिल नहीं होगा। लिहाजा ये जो चुस्तियाँ पैदा हो रही हैं आमाल के अंदर, ये इसकी बड़ी वजह यह है कि हमने ये दरवाजे और खिड़कियाँ बंद नहीं किए, इनको खोला होगा। एक एक चीज का जायजा लेकर देखो कि मेरी निगाह कहाँ भटक रही है, मेरा कान कहाँ भटक रहा है, मेरी जबान कहाँ चल रही है, और काबू में करो। जब इसे काबू कर लिया, इशारा कर देखो अल्लाह के फिक्र ही से सुकून हाजिर होता है लोगों को। अल्लाह के फिक्र के सेवा कहीं और इंसान सुकून प्रदान करना चाहेगा, इंसान नहीं मिलेगा। वो उसी वक्त मिलेगा जबकि इधर की खिड़कियां बंद करे और अंदर से अल्लाह के फिक्र का, जिक्र की क्षमा रोशन करे, तो फिर इंसान के लिए उसका इत्मीनान सुकून की जमानत होगी। और उस वक्त जब ये काम कर लिया, तो अगर कभी बिलफर कोई गलती हो भी जाए इत्तफाकन, तो फौरन तनब्बो हो जाएगा इंसान, और तनब्बो होकर हसरत होगी, नदामत होगी, इस्तफार का मौका मिलेगा, तो तौबा में कई तौफीक होगी। गर जब आए थे फिलहाल एक कबूल अगर दिल के बाग में से एक दिन का भी कम हो जाए, यानी जरा तीन मासियत हो जाए, तो बढ़ते सारे खजाना का कबूल जो अल्लाह के रास्ते में चल रहा होता है, उसके ऊपर गमों से पहाड़ टूट पड़ते हैं कि जरा सा दिन का तरक्की कम हो जाए। ये कैफियत उस वक्त पैदा होगी जबकि अपने आप को बचाओ। तो एक अगर फरमाते हैं नुकसान महूस है, अल्लाह बताए गुनाह यह है कि वो नेकियों की तौफीक सल्ब कर लेता है, और ताकत के ऊपर में जो नशाब पैदा होता है वो नशाब जाता रहता है, और कल्ब के अंदर जो इबादत का नूर है वो बुझ जाता है गुनाह से। इतना बड़ा नुकसान होता है। और मेरे भाइयों, बाद अवकात शैतान ये धोखा देता है, सबको देता है ये धोखा, कि अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है, चलो थोड़ा सा गुनाह कर लो, जरा दिल भर जाएगा, और दिल भरने के बाद तौबा कर ले, अल्लाह ताला तो बहुत माफ करने वाला है। तौबा के भरोसे अगर गुनाह कराने को बढ़ावा कर करता है शैतान। यदि अगर ये एक मरतबा गुनाह कर लो, हसरत दिल से निकल जाएगी, और हसरत किया तो सारी जिंदगी ऐसा करेगी कि ये गुनाह ना किया, हसरत दिल से निकल जाएगी, एक मरतबा दिल भर जाएगा, उसके बाद फिर तौबा कर लेना। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर और तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है, मरते दम तक किसी न किसी वक्त तौबा करने की हो जाएगी तो माफ हो जाएगा। तो रिज़्क के रिल रहे, हाथ से जन्नत न ले, ये गुनाह भी करते रहे और जन्नत भी कमा ले, इस तरह ये शैतान कहता है। खूब समझ लीजिए कि शैतान का बहुत ही बड़ा जबरदस्त धोखा है, इस धोखे में कभी ध्यान नहीं। पहली बात तो ये कि गुनाह के बाद ये तसव्वुर करना कि मैं तौबा कर लूंगा, पहली बात तो ये कि इसकी गारंटी किसने दे दी कि गुनाह के बाद कितनी मोहलत मिलेगी जिंदगी कि आदमी उसमें तौबा कर, ये गारंटी कहाँ, किसके पास, किसी को पता नहीं कब बात आ जाए। अल्लाह बताए है गुनाह कितने वक्त आ गया, तो तौबा की मोहलत ही ना मिले, और अगर बिल्कुल मोहलत मिल भी गई तो जैसा मैंने अभी किया गुनाह का हादसा है, गुना की खासियत यह है कि ये इंसान से तौफीक सलब करता है। तो उस गुना की खासियत यह होगी कि फिर बाद में अभी तो इरादा कर रहे हो तौबा करने का, लेकिन वो गुना अपनी खासियत दिखाएगा जिस हम तौबा को टलाएगा। अच्छा भी कल कर लेना, परसों कर लेना, चलाकर चला जाए। फिर एक खासियत यह होती है गुनाह की कि आपकी सोच तो रहा है कि एक मरतबा गुनाह करके दिल भर जाएगा तो अब मैं फिर फारिग हो जाऊंगा, लेकिन होता यह है कि जब तक गुनाह पर जुरत नहीं हुई थी उस वक्त तक तो डरता भी था गुनाह से, एक मरतबा कर लिया तो जुरत हो गई, जुरत हो गई, अब फिर जाएगा दोबारा। और ये गुनाह की प्यास ऐसी प्यास है जो कभी मिटती नहीं, करने के बाद और ज्यादा प्यास और ज्यादा ले जाए, और ये होते होते इंसान को ले जाएगी कहां से कहां अल्लाह। और जैसे मैंने क्या अल्लाह बताए जब गुनाह की नहूसत कारी हुई तो वो तौबा से महरूम करते तो कुछ बही, तो तौबा के भरोसे पर गुनाह कर लेना कि चलो तौबा कर लेंगे, अगर लोग तौबा कर लेंगे ये ऐसा ही है जैसे इसके रियाज के भरोसे पर अपने आप को सांप से कटवा लेना। एक आदमी के पास रियाज रखा हुआ है जहर सांप के जहर को खत्म करने वाला, बोलता है रियाज को रखता है मेरे पास जाओ सांप से कटवा लो, कोई करेगा सांप चूसे इस गुनाह पर कटवा ले कि मेरे पास उसका इलाज रखता है फौरन लगा दो। जैसे वो कोई जरा की गोश रखने वाला आदमी यह काम नहीं कर सकता, इसी तरह ये काम कि तौबा के बदले से गुनाह करे। मेरे वाले जमाने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद फरमाए अपना एक वाक्य बयान फरमाया करते थे, हजरत वाले साहब रहमतुल्लाह को बिच्छू काटने का एक बेहतरीन अमल आता, यानी अगर किसी ने बिच्छू ने काट लिया हो तो वो अमल पढ़ते थे और पढ़ते फौरन बिच्छू का जहर खत्म हो जाता था और तकलीफ दूर हो जाती थी। दूर दूर से लोग आते थे जो किसी से बिच्छू ने काट लिया तो सब जाते भाई मुफ्ती साहब से अमल करवाएंगे, दूर दूर से दूसरे शहरों से लोग आते थे बच्चों लोगों को लेकर जिनको बिच्छू रखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा ऐसे ही होता था, वो अमल किया पढ़ा चाटकों की बिच्छू का काटा घायल हो गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ एक दिन कि मेरी वालिदा रहमतुल्लाह अलैह ये एक मरतबा हजरत वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह उस जमाने लालटेनों का जमाना था, जहन के अंदर बैठे हुए किताब पढ़ रहे थे मुताला कर रहे थे लालटेन, करीब में एक कोठरी थी मेरी वालिदा साहिबा को वहां जाने की जरूरत पेश आई, वहां अंधेरा था तो हजरत वालिद साहब मुताला कर रहे थे तो वालिदा ने कहा मुझे जरा थोड़ी देर के लिए कोठरी में कोई चीज लेने के लिए जाना है वहां अंधेरा है तो जरा लालटेन मुझे दे दीजिए। अब हजरत वालिद साहब उसको कुछ जरूरी काम कर रहे थे मुताले का तो क्या सामने तो है कि वो चीज जाके उठा लीजिए बाद में, तो मेरी वालदा ने कहा कि वहां पर ऐसा ना हो तो बिच्छू बिच्छू काट ले अंदर जाऊंगा तो बिच्छू काट ले, जो हमारे बिच्छू बड़े निकलते थे। तो मेरे वालिद वाजिद रहमतुल्लाह अलैह के मुंह से ये निकला कि अगर बिच्छू काट भी लेगा तो तुम्हारा क्या बिगाड़ करेगा, यदि अगर बिच्छू ने काट भी लिया तो तुम्हारा क्या बिगाड़ने का मतलब ये है फौरन ही मेरे पास अमल मौजूद है और मैं वो उसके छाटफूक कर दूंगा तो उसका जहर खत्म हो जाएगा। अजवाइ साहब को सुनाते हैं कि मेरे मुंह से ये कलमा निकल गया, ये बात नहीं कि बच्चों ने अगर काट भी लिया तो तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा, बोले फर मैं अमल पढ़ दूंगा ठीक हो जाएगा। अल्लाह का करना है तब्बा बादशाह साहब ने कदम रखा और टोटली मैं बिच्छू ने काट दिया। अब काटने के बाद वैसा फरमाते हैं मुझे उसी वक्त ऐसा हुआ कि मेरे मुंह से गलत कलमा निकल गया। अब फरमाते हैं मैंने जितना अमल जितनी ताकत मेरे अंदर थी अमल पढ़ने की, वो सारे खर्च करके देख ली मगर मृत्यु का काटा दस्त मत। वही अमल जो सैकड़ों हजारों आदमियों को शिफा दे चुका था अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी तौफीक से, वही अमल अपने घर में कर रहे हैं तो गुज्जर से मत। नतीजा ये कि काफी देर गुजरी है, वालदा बेचैन रही है उस गुच्छू के काटने की वजह से, और फिर पता नहीं किस तरह अल्लाह ताला ने उसको दूर किया, लेकिन वो अमल काम था। और भाई साहब जरा ये मिसाल दिया करते थे कि देखो यहाँ इस भरोसे पर कि मेरे पास अमल है, बिच्छू के काटने को मैंने कह दिया कि तुम्हारे क्या बिगाड़ दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने दिखा दिया कि कोई चीज इंसान के बस में नहीं, किसी चीज पर भरोसा नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह दिल दिलाने की बात। तो ये मिसाल अल्लाह वाले साहब दिया करते थे कि देखो ये घटना जिसे हम लोग बार बार तौबा के भरोसे पर गुनाह कर गुजरते हैं, ये तौबा कर लेंगे तो तौबा की तौफीक ना हो तो क्या कर बैठेगा। पता नहीं कितनों को शैतान इस तरह पहचान कर कहां से कहां ले जा चुका, जो गुनाहों की दलदल में फंसा दिया, अब वापस नहीं आ सकते। अल्लाह बचाए एक गुनाह की खतरनाक आते थी होती है कि तौफीक है। तीसरी नहूस है गुनाह की हजरत फरमाते हैं यह है कि तुमने अल्लाह की नाफरमानी की तो तुम्हारे माता तुम्हारी नाफरमानी करने लगे, तुम्हारी औलाद तुम्हारी नाफरमानी करती है। जब तुम अपने मालिक की नाफरमानी करते हैं कबर बांधे हुए हो उसका हुक्म नहीं मान रहे, तुम्हारी औलाद क्यों माने, तुम्हारा बता तुम्हारे माता है क्यों माने, इस बात में जो तुम्हारे माता है महकूम है वो नाफरमानी करते रहते हैं। इजाजत ने मिसाल दी कि एक बुजुर्ग थे, एक मरतबा घोड़े पर सवार हुए तो वो घोड़ा जो है वो शोखी करने लगा, यानी नहीं चलता, बात नहीं मानता, ले जाने को कहीं कहते हैं जाकर किसी और तरफ है। तो खुद बुजुर्ग ने फरमाया कि आज हमसे यकीनन कोई गुनाह हुआ है जिसकी वजह से ये घोड़ा हमारी नाफरमानी कर रहा है, और जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के नाम एक फरमान हो जाता है और उससे फरमान बरदारी करता है नाफरमानी की बनता है तो सारी कायनात उसके दावे फरमान होता है। अगर किताब इकराम को देखो रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए दरियादी पर हुक्मरानी हो रही है, दरियादी को खत भेजा जा रहा है जो कि चल पड़ा में काफे जो है अफ्रीका के जंगलात में खड़े होकर जानवरों का ध्यान कर रहे हैं कि हाँ हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, सहाबा है, यहाँ पर हम जिहाद करने के लिए आए हैं, ये जंगल खाली कर दो, सारा जंगल खाली हो रहा है, शेर चीते भेड़िए सब भागे जा रहे हैं। जो अल्लाह के ताबे फरमान हो जाता है सारी कायनात के ताबे फरमान की मोहम्मद से वफा तुमने तो हम दे रहे हैं ये जहाँ चीज है ना लौटत बलम ये अल्लाह तआला को बता रहे हैं, और जब उसकी नाफरमानी की तो उसके जो महकूम है मातहत है वो उसकी नाफरमानी कर रहे। आज देखो ये शिकवा भी बकसरत जबानों पर है कि भाई औलाद नाफरमान हो रही, शागिर उस्ताद की बात नहीं मान रहा, मुलाकिम अपने अफसर की बात नहीं मान रहा, तो क्यों नहीं मान रहा, इस बात से कि हम अपने मालिक की बात नहीं मान रहे तो हमारे पास क्या करते नाफरमान हो। ये तीसरी नबूसत है गुनाह, और फिर चौथी नबूसत हजरत वाला फरमाते हैं बड़ी खतरनाक है वो ये गुनाह को छोटा समझ के सगीरा गुनाह है। लोग बस सवाल किया करते हैं कि ये गुनाह सगीरा है या कबीरा है, मतलब अगर सगीरा है तो चलो कर बैठ, सगीरा समझ कर छोटा समझ कर गुनाह कर लिया वो गुनाह फिर अल्लाह बचाए कबीरा तक पहुंचा देता है। गुनाह के हाथ करके एक गुनाह दूसरे गुनाह को फेंक कर कबीरा तक पहुंचा देता है, और अल्लाह बचाए जब कबीरे पर इकरार होने लगे तो कभी कभी कुफ्र तक ना बता जाए, अल्लाह ईमान कर दो अल्लाह ताला का। और भाई पांचवी नहुष है, वो भी बड़ी जबरदस्त नहुष है। गुना यह है कि ये अकल को उल्टा कर देता, अकल को नहीं कर देता गुना। जब आदमी गुनाहों का आदि हो जाता है तो अकल ओंधी हो जाती है, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझने लगे। देखो कुरान करीम ने फरमाया इन तकुल्लाह यजअलकुम फुरकान, कि अगर तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह से डरने का माना क्या है, गुनाहों से बचोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज आता फरमा। फुरकान के क्या माना, फुरकान के माना अच्छे बुरे की तमीज, यानी फिर तुम्हें वो समझ आता होगी, इससे तुम पहचान लोगे कि ये काम अच्छा है ये बुरा है, ये बात सही है ये बात गलत है, यहाँ का ये बात है। और अगर तकवा ना हो, तकवा ना हो यानी गुनाहों से बचना ना हो, तो फिर ये गुनाह जो है इंसान की अकल ओंधी कर देता है, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा समझने लगता है इंसान। देख लो आज पूरी दुनिया में ज्यादा लेकर देता है, जितनी वो चीजें थी जिनको के किसी वक्त हर अकल सलीम रखने वाला बुरा समझता था, आज उसी की तारीफ में और उसको अच्छा साबित करने के लिए मुहिम चल रही है। जिस चीज को काबिले मलामत समझा जाता था आज उसको काबिले तारीफ समझा जाता है। देखो कभी किसी जमाने में ये गाने बजाने वाले जो होते थे, जो गाने बजाने का पेशा करते थे, इनको मीराती कहते थे, ये मीराती लोग, और माशरे में इनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। अब कोई शख्स अगर ये चाहे कि मैं मीराती बन जाऊँ तो किसी के दिल में कभी ख्याल नहीं आता कि मैं मीराती बनूँ, लेकिन आज वही मीराती जो है वो आर्टिस्ट बन गए, फनकार बन गए, उनकी शोहरत हो रही है, दुनिया की तारीख से टोंगरे बरसा रही है, और लोग तमन्ना कर रहे हैं रुपया दे। तो अब क्या हुआ, यह अकल ओंधी हो गई, जिस चीज को जो चीज बुरी थी उसको काबिले तारीफ, उसको काबिले रश करार दिया, अकल ओंधी हो गई अल्लाह। और इस अकल ओंधी होने का अल्लाह ताला हमें संजाम से महफूज रखे, लेकिन मगरिब में जाकर देखो मगरिबी मुल्कों में कोई बद से बदतर हरकत ऐसी नहीं है जिसकी ताहीद में बाकायदा फलसफे ईजाद ना हो गए। किस्मत फरोशी, किस्मत फरोशी यानी कौन है जो उसको अच्छा समझे कि औरत जो अपने जिस्म को फरोख करे, कौन है इसका किस्म है जो इसको अच्छा समझे, लेकिन आज इसकी ताहीद में बाकायदा फलसफे वजूद में आ गए हैं, बाकायदा कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं उनको सही साबित करने के लिए, मर्द मर्द से शादी कर रहा है और उसके तारीख में जुलूस भी कर रहा है, मुजाहरे हो रहे हैं, अखबार में मजामीन छप रहे हैं, उस बुराई को अच्छा साबित करने के लिए अकल ओंधी हो रही है। तो गुनाह की एक बात यह है कि हक को बातिल की, अच्छे बुरे की तमीज मिटा देता है, अकल को ओंधा कर देता है, और उसके नतीजे में आदमी सही रास्ते रास्ता यह है कुरान करीम फरमाता है कि जो लोग नाफरमानी का रास्ता इख्तियार करते हैं तो हम उनके कलों पर मोहर लगा देते हैं, अल्लाह बताए मोहर लग जाती है, फिर अच्छी बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं, मोहर लगाने के बाद। तो मेरे भाइयों इतनी खतरनाक चीज है ये गुनाह, और वो छोटा हो या बड़ा, लिहाजा इस गुनाह की जुरत पैदा करने से अपने आप को, और हज उसका क्या है, हजरत फरमाते हैं हज उसका यह है कि अब तक की जो जिंदगी गुजरी और उसमें जो गुनाह कसरत हुए उन सब से एक मरतबा इस्तेमाल के साथ, नदामत के साथ गुनाह की बुराइयों को सामने रखकर उन सब से तौबा कर लो, अल्लाह तबारक व तआला के पास आ। दो रकतें पढ़ो नमाज़े तौबा और पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नदामत के साथ गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग, या अल्लाह बड़ी गलती हो गई, बड़े गुनाह सरगर हो गए, या अल्लाह हमने आंखों की हिफाजत नहीं की, कान की नहीं की, जबान की नहीं की, आपने नफरमानी में इसको मुबतला रखा, अल्लाह पर फजल करम है। अब आप फरमाते हैं, अब आजम करते हैं, सबका हाथ करते हैं कि आइंदा इनकी हिफाजत करें, तौबा अच्छी तरह अल्लाह तबारक व तआला की जो बारगाह अल्लाह तआला का रहमत यह है जब टाइम मुनसब की कमर लाता फला अजीत फरमाया कि अगर कोई शख्स तौबा कर लेता है तो ऐसा बना देते हैं उसको जैसे गुनाह किया है, और जब एक मरतबा सच्चे दिल से तौबा कर लो तो मैंने आज किया ना कि निशान तो रहता है लेकिन जितना उस निशान को तौबा करने के बाद आमाल हसना करते जाओगे तो इन हसना सैया, तो अच्छे काम जो है नेकियां जो है वो बुराइयों के असर को मिटाते जाते हैं, तो फिर वो निशान भी इशारे मिट जाए और फिर अल्लाह तबारक व तआला के साथ ताल्लुक का भी होगा। और याद रखो अल्लाह तआला के साथ मजबूत ताल्लुक करने का इससे बेहतर नुस्खा कोई और नहीं कि अपने नफ्स की ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के लिए गुजरने की कोशिश करो, कुछ लोग जितना कुछ लोगे उतना ही अल्लाह तबारक व तआला के साथ महब्बत का ताल्लुक मजबूत होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह जिंदगी सुगर है। तो अल्लाह ने रास्ता भी रखा है हर इंसान के लिए रास्ता रखा है, और उसके बाद अहमियत समझ ले इस बात की कि हमें अपने तमाम आजाए जिस्म को और अपने दिल को गुनाहों से पाक करना है, हस्ती बनकर इन नुकसान से अपने आप को बचाना है जो हमारी जान को हलाकत में डाल रहा है। तो इंशाअल्लाह बाकी मादा जिंदगी दुरुस्त हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की तरफ से रहमत का मामला फरमाए, उनसे ताल्लुक मजबूत हो जाएगा और फिर इंसान की जिंदगी सुधर जाएगी। अल्लाह तआला अपने बंदों की तरफ से अपनी रहमत से मुझे आप सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा वहां اللهم صل على عافيتنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رحم الراحمين اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے اگلے پچھلے خفیہ اعلیٰ ہر طرح کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کرنا، یا اللہ رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرمانا، یا اللہ رحمت سے گناہوں کی عمر سے بچنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ یا رحم الراحمین ہم پہ ہمت ہے ہمت عطا فرما دے، یا اللہ پہ حوصلہ ہے حوصلہ عطا فرما دے، یا اللہ ہم اپنے رب پر شیطان کے ہاتھوں اے اللہ ہم ان کی غلامی میں آ گئے ہیں، اپنے رحمت سے ان کی غلامی سے ہم کو نکال لے، سب کی غلامی کے طرح ہم کو لیا، یا اللہ ہر طرح کے شر اور فتنے سے ماتحتوں سے برکرات سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھرواروں کی حفاظت فرما، ہمارے عزت اور احباب کی حفاظت فرما، یا اللہ گناہوں کی نوعیتیں ہم پر مسلط ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے نوعیتیں ہم سے ہم کو نجات عطا فرما دے، یا اللہ تمام حکومتوں سے نجات عطا فرما دے، ہمارے شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، یا اللہ ہمارے شامت اعمال کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے، یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما، پریشانیوں کو رفع فرما، یا رحم الراحمین بہت سے لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ہے زبانی یا تحریری طور پر، یا اللہ رحمت سے ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، یا کہ اللہ کے حضرات نے متعدد بیماروں کی شفا کے لیے دعا کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان سب بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے اپنی رحمت سے شفا کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ ان سب کو صحت عافیت کاملہ عاجل مستمر عطا فرما، یا اللہ رحمت سے ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے ہمیں حیات طیبہ عطا فرما، دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت عطا فرما. یا اللہ تمام عالم اسلام کو مسلمانوں کی مشکلات کو آسان فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ ان سب کو اس کی مدد فرما. یا اللہ ان سب کی نصرت فرما، ان کو کفار کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا اللہ لبنان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، ایشان میں، جہاں جہاں مسلمان یا اللہ کفار کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو ان کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. یا اللہ دارالعلوم کو تمام قائمی باطن رفتیات عطا فرما، اس کے منصوبوں کی یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے رضا کے مطابق تکمیل فرما. یا ارحم الراحمین، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی، اپنے رحمت سے ان سب کے دلی برادوں کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما، ان سے مشکلات کو آسان فرما. اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. امين برحمتك يا رب.